प्रिय मित्र, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आपने जीवित और सच्चे परमेश्वर के पीछे चलने का, उन्हें अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान देने का निश्चय कर लिया है। इस विषय कुछ और बातें हैं जो मैं आपको बतलाना चाहूंगा।
जी हाँ, जरूर। मेरी बड़ी इच्छा है कि इस विषय में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकूं।
अच्छा, सुनिए। जब भी कोई व्यक्ति मसीह यीशु को अपना उद्धारक बनाकर जीवन में आमंत्रित करता है, अनेक अनेक सुंदर बातें उसके जीवन में घटने लगती हैं। दूसरे शब्दों में, उसके जीवन में आशीषों की वर्षा होने लगती है। उसी क्षण सर्वप्रथम उसके सारे पाप क्षमा हो जाते हैं, पवित्र आत्मा उसके हृदय में आकर निवास करने लगता है। यह सहायक आत्मा जो कि उसे परमेश्वर की दृष्टि में सही कार्य करने के लिए प्रेरित एवं संचालित करता है। मसीह यीशु को अपनाने के कारण वह परमेश्वर की संतान, परमेश्वर का पुत्र बन जाता है, परमेश्वर के परिवार का एक सदस्य। उसे निरंतर परमेश्वर की सहायता, सुरक्षा और आशीषें प्राप्त होने लगती हैं।
यानी हमारे लिए आवश्यक है कि हम सदैव परमेश्वर पर अपना विश्वास बनाए रखें, हर बात में उनका आज्ञा पालन करें और यह करने के द्वारा उनके प्रति अपना प्रेम प्रकट करें।
जी हाँ, परमेश्वर ने हमारे प्रति अपना प्रेम हमारे लिए मसीह यीशु देकर प्रकट किया है। हमारे और समस्त मनुष्यों के पापों का दंड के लिए परमेश्वर ने मसीह यीशु दे दिया। इसलिए आवश्यक है कि हम परमेश्वर के इस प्रेम का विश्वास करें। परमेश्वर के प्रति विद्रोही होने की स्थिति में भी हमारे प्रति परमेश्वर का प्रेम कम नहीं हुआ। इसलिए अब हमारा कर्तव्य यह है कि हम हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद ही करते रहें। अक्सर ही हमारे जीवन में जो कठिनाइयां, विपत्तियां या समस्याएं आई करती हैं, वे परमेश्वर की अनुमति ही से आया करती हैं। तब उन परिस्थितियों में हम यह ना सोच बैठें कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम करना छोड़ दिया है। इन कठिनाइयों के द्वारा परमेश्वर हमको अपने और अधिक निकट लाने का प्रयास किया करते हैं। परमेश्वर की महाशक्ति का परिचय हमको मसीह यीशु के मृतकों में से पुनर्जीवित होने के द्वारा मिलता है। इसी महासामर्थ्य से परमेश्वर हमारी सहायता करते रहते हैं। उनके समस्त प्रयास हमको एक परिपक्व या सशक्त मसीही बनाने की दिशा में हुआ करते हैं।
अच्छा अच्छा, यह समझाइए, यदि एक मसीही कोई ऐसा कार्य कर बैठे जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है, तो क्या उसके प्रति परमेश्वर का प्रेम समाप्त हो जाएगा?
जी नहीं, परमेश्वर इस परिस्थिति में भी उससे प्रेम करते रहते हैं। निसंदेह परमेश्वर का हृदय इसके द्वारा अत्यंत दुखी हो जाया करता है। इस परिस्थिति को सुधारने का एक तरीका है, जैसे एक बालक खेलते हुए गंदा हो ही जाता है और उसे पुनः साफ करना आवश्यक हो जाता है। उसी तरह जिस क्षण आपको यह बोध हो कि आपने पाप किया है, आपका यह कर्तव्य हो जाता है, आप उसे परमेश्वर के समक्ष स्वीकार करें। आप परमेश्वर से उस पाप के विषय यूं कहें, हे परमेश्वर, मेरे स्वर्गीय पिता, मुझसे ये पाप हो गया है, अपने इस कार्य के लिए मैं शर्मिंदा हूं, सचमुच मैंने यह गलत किया है, मसीह यीशु के नाम में आप मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरी ऐसी सहायता कीजिए कि मैं फिर कभी ये पाप ना दोहराऊं। परमेश्वर तब आपके पाप को मसीह यीशु में क्षमा कर देंगे और आपकी सहायता करेंगे कि आप उस पाप को फिर ना करें। यह बाइबल में लिखी हुई एक प्रतिज्ञा है। बाइबल में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो अर्थात परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है।
अच्छा अच्छा, अब मैं आपसे एक और प्रश्न करना चाहूंगा और वह यह है, यदि कोई मेरा बुरा करे तो उसके प्रति मेरी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए और तब उसके प्रति मेरा कर्तव्य क्या हो जाता है?
परमेश्वर को जानने और मसीह यीशु को अपनाने के पूर्व परमेश्वर की दृष्टि में हम बुरे काम यानी पाप ही किया करते थे। हम परमेश्वर के मित्र नहीं थे, फिर भी परमेश्वर हमसे प्रेम करते रहे। इसलिए परमेश्वर के इस नियम के अनुसार हमारा भी यही कर्तव्य है कि हम भी उस व्यक्ति को क्षमा करें, उससे प्रेम करें जिसने हमारे प्रति बुरा किया है। हमारे लिए ऐसा करना तभी संभव होता है जब परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में निवास करता हो। इस परिस्थिति में हम उस व्यक्ति के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें, यथासंभव उसकी सहायता करें और सुअवसर मिलते ही उसे मसीह यीशु और परमेश्वर के प्रेम के विषय बताएं।
अच्छा, ये बताइए, परमेश्वर से प्रार्थना मैं कब करूं और कैसे करूं?
किसी भी समय, किसी भी स्थान पर, किसी भी वस्तु के लिए, दिन में या रात में हम प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि प्रार्थना करना परमेश्वर से बातचीत करना ही तो है। अपनी इन आंखों से हम परमेश्वर को भले ही देख न सकें, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ सदा बनी रहती है। सच तो यह है कि यह परमेश्वर ही की अभिलाषा है कि हम निरंतर उनसे प्रार्थना में वार्तालाप करते रहें। अपनी प्रार्थना में हम परमेश्वर को उनके पुत्र हमारे प्रभु मसीह यीशु के लिए धन्यवाद दें और फिर उन्हें उद्धार की योजना और अपने पापों की क्षमा के लिए धन्यवाद दें। अपनी सुरक्षा और उनके द्वारा की गई सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्हें धन्यवाद दें। और यदि हमारे समक्ष कोई समस्या है, कोई संकट है, कोई आवश्यकता है, तो वह भी हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना में रख दें। यदि हम पर शोक का समय आ पड़ा है, तो हम परमेश्वर की शांति के लिए प्रार्थना करें। हमारी हर कठिनाई में परमेश्वर सहायक हैं, क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं।
बड़ी शांति मिली इन बातों को सुनकर। अब मैं प्रार्थना भी कर सकूंगा। मैंने निश्चय कर लिया है कि मसीह यीशु को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लूं।